नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन्ह हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।